तब ये स्थानों का दर्शन करने के बाद में हम चैतन्य मठ में आए। हाँ, चैतन्य मठ भी बहुत अद्भुत जगह है। ठाकुर भक्ति विनोद, क्योंकि बड़े अधिकारी थे ब्रिटिशों के राजसभा में, आप जानते हैं ना, जब बड़े अधिकार होते तो बार बार बदली होती है उनकी, क्योंकि हर बार जगह उनका सेवा की आवश्यकता होती है। तो जहाँ पर भी कुछ कमियाँ हैं, डेफिशिएंसी, तो बड़े अधिकार को वहाँ भेजते हैं। इस तरह से ठाकुर भक्ति विनोद को कई जगह पर पोस्टिंग बदली बदली होता रहा। एक पोस्टिंग में वो ओडिशा में जगन्नाथपुरी में उनका पोस्टिंग हुआ, जगन्नाथपुरी के कलेक्टर के रूप में, और जगन्नाथ मंदिर का पूरा अधिकार उनके पास में आया, प्रशासकीय अधिकार। मतलब कोई चेंज करना है, कोई टूटा हुआ चीज़ बनाना है, कोई पैसा खर्च करना है, तो उनके अधिकार में था, सैंक्शनिंग अथॉरिटी। तो ऐसे कहा गया है कि जगन्नाथपुरी में उनका निवास स्थान चैतन्य गौड़िया मठ की जगह पर था, वो उनका घर है जहाँ पर हम लोग गए, जिनका हमने भजन गाया, जिनका गौरव सुनाया आपको, उनका वो घर है जहाँ पर वो रहते थे। उनके सामने जो है राजा गजपति का महल है, जो अभी भी वो राजा हैं पुरुषोत्तम देव, वो पीढ़ी पीढ़ी से आते हैं। अभी उनको उतना अधिकार नहीं बचा जैसे पहले था, अभी तो गवर्नमेंट लोकशाही हो गई है, लेकिन राजा का पद अभी भी है, उनको सम्मान तो अभी भी है। तो उनका एग्जैक्टली राजा के, उड़ीसा के राजा के, गजपति राजा के महल के सामने उनका घर है। तो उन्होंने अपने अधिकार में जगन्नाथपुरी के पंडाओं को बहुत ट्रेनिंग करके भगवान की पूजा का दर्जा बहुत उच्च किया उन्होंने उनके उनके काल में। कोई ऐसा अधिकारी मिलता है क्या आपको आजकल, आईएएस अधिकारी, जो मंदिरों को उद्धार करता है, जीर्णोद्धार, उसको साफ करवाता है, उधर की पूजा का विधि को उच्च करता है? हाँ, वो तो आते हैं मंदिर की पूंजी को लूटने के लिए आ जाते हैं, अपने पूंजी में उसको साइन साइन करके उसको लूट लेते हैं आजकल के अधिकारी। बचपन में पढ़ाई में वो तेज़ होते हैं, फिर आईएएस पास करते हैं, बड़े तेज विद्यार्थी, जैसे गवर्नमेंट में घुसते हैं भ्रष्ट हो जाते हैं वहाँ के संघ की वजह से। लेकिन ये ऐसे अधिकारी थे, ऐसे पावरफुल पोजीशन में थे कि वो करोड़ों रुपए कमा सकते थे ऐसे ही साइन करके। लेकिन जहाँ जहाँ भी गए उन्होंने उस जगह का आध्यात्मिक उद्धार किया, क्योंकि संत थे वो स्वयं। तो जगन्नाथपुरी का न केवल साफ सफाई और दर्जा ऊंचा किया, और साथ साथ में पूजा का भी स्टैंडर्ड उन्होंने बहुत श्रेष्ठ कर दिया। तो उन्होंने सबसे पहले ग्रंथ लिखा, एक यानी लेख लिखा, आर्टिकल लिखा, जो सबसे पहले भारत के इतिहास में गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत के विषय में लिखा हुआ लेख सबसे पहले लंदन पहुंचा, द फर्स्ट आर्टिकल दैट ही रोट। उनकी इच्छा थी कि ये जो शास्त्र है गौड़ीय सिद्धांतों का, भक्ति का, चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दिया गया ये भक्ति प्रेम का शास्त्र सब विदेश में फैलना चाहिए। लेकिन उनकी उम्र हो गई थी बहुत, उन्होंने कई नामहट्ट स्थापन किए। नामहट्ट यानी प्रीचिंग सेंटर, मतलब ये गांव में गए, एक स्थान खोल दिया, लोगों को इकट्ठा किया, बोलना आपको भगवान का नाम का जप करना है, लोगों को सिखाना है और लोगों को प्रवृत्त करना है, उसको नामहट्ट कहते हैं। हाट यानी बाजार, नामहट्ट यानी नाम का बाजार। हाँ, यहाँ पर नाम लोगों को लेने के लिए प्रवृत्त करते हैं। तैसे उन्होंने बंगाल में बहुत जगह नाम हट खोले। तो उनकी इच्छा थी कि मैं तो अभी बुजुर्ग हो रहा हूँ, वृद्ध हो रहा हूँ, नहीं बुजुर्ग नहीं हो रहे थे, उन्होंने ऐसे ही भगवान से प्रार्थना किया कि मुझे ऐसा एक पुत्र दो कि जो आपका एक किरण हो, आपका एक किरण मेरे पुत्र के रूप में आ जाए, और उस पुत्र के द्वारा पूरे मुझसे भी अधिक प्रचार भगवान नाम का सब जगह हो जाए। तो उसके बाद में बिमला प्रसाद का जन्म हुआ। उनकी पत्नी जो भगवती देवी थी, कोई बात नहीं बैठे, आप कोई कुछ नहीं करेगी आपको, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे रवि, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये देसी तरीका हो गया। हरे कृष्णा। एनीवेज, तो उन्होंने, वो वृद्ध नहीं हुए थे, जवान अवस्था में थे, और उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया, जगन्नाथ से, कि आप ऐसा एक पुत्र दीजिए जिसके द्वारा बहुत प्रचार हो भगवान का। उनकी माता ने बिमला देवी से व्रत किया था, बिमला जी का संबंध कहाँ था हमारी कथा में, हमने बताया आपको, जब जब जगन्नाथ जी का नया विग्रह होने का समय आता है उस समय चीफ पुजारी को स्वप्न आता है और वो ऑफिशियली वहाँ जाकर रहते हैं। कितने दिन रहेंगे, जितने दिन स्वप्न नहीं आएगा उतने दिन वहाँ पर रहेंगे, हर रात को सोएंगे, स्वप्न है तो अगली रात को भी सोएंगे, तो स्वप्न आएगा तो नेक्स्ट डे पूजा होके वो निकल जाएंगे। तो वही बिमला देवी के मंदिर में भगवती देवी ये उनकी पत्नी थी, उन्होंने भी नवस किया था, मन्नत मांगी थी, यथावकाश उनको पुत्र हुआ, उनको तो 13 पुत्र हुए वैसे, तो ये कितना नंबर का पता नहीं है, लेकिन इनका नाम रखा गया बिमला प्रसाद, क्योंकि बिमला देवी के मन्नत से उनका जन्म हुआ था। जब बालक जन्म हुआ तो बहुत बड़े अधिकारी का बच्चा था तो बहुत उत्सव मनाया गया, और कहते हैं 6 दिन का बालक जब हुआ या 6 महीने का हुआ कुछ जैसे समय हुआ, तो मेरे ख्याल से उनका जन्म जो है ना वो हमेशा जनवरी में आता है और रथ यात्रा हमेशा जुलाई में आती है, तो उनका जन्म के बाद में 6 महीने का समय था। उनका तिरुभाव दिसंबर में आता है, उनका जन्मदिन जनवरी में कभी आता है, रथ यात्रा आषाढ़ में जुलाई में होती है, जून जुलाई में। तो जुलाई में रथ यात्रा जब हुई तभी ये बड़े अधिकारी है ना, तो रथ यात्रा ऑफिशियली उनके गेट पर रोकी गई। हमारे यहाँ कैसे होता है, जैसे मीरा रोड से निकलते हैं मंदिर से तो भक्तिविदान के गेट पर रोकते हैं, वहाँ पर फिर हमारी तरफ से उनकी आरती होती है, फिर आगे जाकर वो सेक्टर के सामने रोकते हैं, वो उनकी तरफ से आरती होती है। वैसे जब भगवान वहाँ निकले वहाँ से जगन्नाथ जी के उस साइड पे है ना, वो उस साइड पे ही है इनका मठ, आज मठ बन गया लेकिन घर था उनका, तो ऑफिशियली उसको रथ यात्रा को वहाँ रोका गया। जैसे ही रोका गया तो भगवती देवी अपने बालक को गोद में लेकर भाग भाग के आई, और उनको अधिकार था, बड़े अधिकारी का बेटा था, तो उन्होंने अपने बालक को जगन्नाथ जी के चरणों में रखा, 6 महीने के बालक को। और उसी समय जैसे ही माता ने अपने 6 महीने के बालक को जगन्नाथ के चरणों में रखा, जगन्नाथ के हाथ से माला निकली और बच्चे के गले में गिरी। ठाकुर भक्तजनों देख रहे थे, वो समझ गए कि मैंने जो प्रार्थना किया है इसका ये उत्तर है, यही बालक है वो जो मेरी प्रार्थना के फल के स्वरूप प्राप्त हुआ है। और आगे जाकर उनकी जीवनी आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कितने महान विभूति थे वो, उनको चलता बोलता शास्त्र कहते थे, वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया। उम्र के 7 साल में उनको भगवद गीता कंठस्थ हो गई थी, प्रवचन भी करते थे गीता के ऊपर 7 साल की उम्र में, और 13 साल की उम्र में पूरा भागवत कंठस्थ हो गया उनको, सारे शास्त्र कंठस्थ हो गए। उन्होंने एक किताब लिखी है सूर्य सिद्धांत, उनके जैसा उनके समय का भविष्यवेत्ता कोई नहीं था, क्या कहते हैं उसको, एस्ट्रोलॉजर, द ग्रेट एस्ट्रोलॉजर, मतलब उनको शास्त्र का इतना ज्ञान था, और उन्होंने भक्ति के हिसाब से भविष्य शास्त्र को लिखा है सूर्य सिद्धांत के स्वरूप ग्रंथ के माध्यम से, इतनी बड़ी किताब है वो लेकर फायदा भी नहीं, कुछ समझ में नहीं आता उसके अंदर क्या लिखा है, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड उसका उन्होंने विवरण तो दिया है लेकिन हमारी बुद्धि इतनी तेज नहीं कि उसको समझ सके, मतलब बेसिक नॉलेज भी होना जरूरी है। ये संस्कृत है तो किताब बड़ी, लेकिन उसको ABCD आना चाहिए संस्कृत का ना पहले, फिर पता चलेगा क्या लिखा है उसके अंदर। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बड़े विद्वान थे वो, और उनका भी एक गौरव था कि वो सिंह गुरु के नाम से जानते थे उनको। भारत की एक विशेषता है, जहाँ पर भी जाएंगे तो भगवान को निर्विशेष मानते हैं, निर्विकार मानते हैं, कि भगवान की आंखें नहीं है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, वो एक शक्ति है, कण कण में समाये हुए हैं, उनमें लीन हो जाना है, निर्वाण का मतलब उनसे एक रूप होना है, ऐसा एक सिद्धांत मायावाद जो है भारत में सब जगह फैला हुआ है। ये 4 संप्रदाय जो है केवल हमारे, एक हमारा संप्रदाय गौड़ी संप्रदाय, एक पुष्टि मार्ग, एक विष्णु संप्रदाय और कुमार संप्रदाय, 4 संप्रदाय जो है इसमें कि भगवान का व्यक्ति रूप में प्रचार करते हैं कि भगवान भी व्यक्ति है हमारे जैसे, इज अ पर्सन, हाँ आदि पुरुष है वो। तो ये इतने तेज प्रचार करने वाले थे कि इनके आने से मायावादी लोग भाग जाते थे, क्योंकि इनके प्रचार के सामने कोई टिक नहीं पाता था, इतने वो, इसलिए उनका नाम पड़ गया था सिंह गुरु। तो ये इन्होंने भारत भर में 64 जगह पर गौड़िया मठ स्थापन किए, जैसे हमने हरे कृष्ण मंदिर स्थापन किया ना, अभी 602 हरे कृष्ण मंदिर है दुनिया में, वैसे इन्होंने 64 पूरे भारत भर में गौड़िया मठ स्थापन किए। और एक समय 1922 में ये कोलकाता में प्रचार कर रहे थे एक एक व्यक्ति के घर के टेरेस के ऊपर, और अभय चरण अभय मोहन डे, ये कॉलेज का विद्यार्थी था। उसके पिताजी का नाम गौर मोहन डे। घर में बहुत भक्ति का वातावरण था। अभय जवान हो गया और उनकी 26 साल की उम्र थी, तो उसका मित्र नरेंद्र बोला कि अरे एक बड़े संत आए हैं, उनका प्रवचन किसी के घर पे टेरेस पे चल रहा है, आपको चलना चाहिए। वो कहते हैं कि अरे बचपन से मैंने मेरे पिताजी के घर में रहते हुए कई संतों का दर्शन किया है, उसमें तो आजे तो बोगस हुआ करते थे जिन वो अपने घर में खाना खाते थे, चरस चिलिम गांजा पीने वाले सबको देखा है, तो मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। बोलते नरेंद्र बोलते वो ऐसे नहीं है, ये स्पेशल संत हैं। फिर भी बहस करते नहीं नहीं हाँ ना नहीं नहीं हाँ हाँ नहीं नहीं चलना चाहिए। आखिर में नरेंद्र जो है वो अभय को कन्विंस करता है कि ना आपको तो एक बार तो आना ही है इनको मिलने के लिए। तो फिर अभय दोस्ती के खाते चल जाते हैं, निकल के टेरेस चढ़ते हैं तो कथा चल रही है और लेट कमर दोनों आते हैं ऐसे अंदर। अब भारतीय संस्कृति के हिसाब से दंडवत प्रणाम करते हैं झुककर। जैसे दंडवत से अभी उठे ही नहीं है तो प्रवचन के बीच में ही ठाकुर भक्ति सिद्धांत बिमला प्रसाद जी आगे जाकर संन्यास लेकर भक्ति सिद्धांत सरस्वती बन जाते हैं। तो ये प्रवक ऐसे कथा में बैठे हुए हैं तो कोई वहां दंडवत कर रहा है, उठने के पहले बोल रहे हैं आप पढ़े लिखे नौजवान हो, आपको ये चैतन्य महाप्रभु का प्रेम का संदेश जो है वो देश विदेश में अंग्रेजी भाषा में प्रचार करना चाहिए। तो इनके मन में पहले ना आ गई कि मैं नहीं करूंगा इसको, क्यों करूंगा, मेरा आपका संबंध क्या है, आप मुझे इतनी बड़ी आज्ञा दे रहे हो, ऐसे मन में चल रहा है विचार उनके, ये कौन होते हैं मुझे जीवन भर का इतना बड़ा आज्ञा देने वाले, मैं जान ना पहचान दे दिया आदेश। तो उन्होंने कुछ बताया नहीं, लेकिन उन्होंने वाद शुरू किया। उन्होंने कहा कि देश आजाद नहीं है, अंग्रेजों के कब्जे में है, इस समय ये प्रेम भक्ति का प्रचार करके क्या लाभ है, पहले देश को आजाद करना चाहिए, उसके बाद अपना नियंत्रण होगा, फिर भक्ति भक्ति कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि इसके पहले किसका राज था, ब्रिटिशों के पहले बोले मुसलमानों का राज था, उसके पहले किसका था, अशोक राजा का राज था, ऐसे बहुत राज्य बदली होते रहते हैं। आज किसी पावरफुल व्यक्ति आया तो उसका राज्य होने लगेगा, कल उसको कोई हराने वाला आया तो उसका राज्य हो जाएगा, ये राज्य बदलते रहते हैं, हर राजा बदलते रहता है, लेकिन ये सब राजाओं के होते हुए जन्म मृत्यु का चक्र चलते रहता है, वो रुकता नहीं है। अंग्रेजों का जाएगा और तुम्हारा राज्य आएगा तो मृत्यु का चक्र बदली नहीं होगा, वही चलता रहेगा उसका काम। तो ये वाद विवाद बहुत लंबा था, उन्होंने उसमें ये सिद्ध कर दिया उनको कि राज्य बदली होने से ज्यादा महत्वपूर्ण भगवान का संदेश पहुंचाना है, कि मूल समस्या हमारी राज्य किसका ये नहीं है, हमारी मूल समस्या कि हम मर रहे हैं सब लोग, ये दुनिया में हम मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, ये राज्य किसका है इससे भी बड़ी समस्या है, चाहे इनका हो तुम्हारा हो या किसी और का हो, आपकी मृत्यु निश्चित है। तो मृत्यु से बचने के लिए संदेश जो प्रेम भक्ति का है वो हर समय इमरजेंसी है। तो ये विवाद के अंत में प्रभुपाद जी ने बोला नहीं कुछ, लेकिन हृदय में ये फिक्स कर लिया कि ये मेरे गुरु हैं। पहले आज्ञा सुनी, मन में ना बोल दिया, बहस में एंड हो गया तो उन्होंने हृदय में हाँ बोल दिया कि ये मुझे ये मेरे गुरु हैं। उसके 11 साल के बाद में 1933 में अभय चरण डे, अभय गौर मोहन डे, इन्होंने ठाकुर भक्ति सिद्धांत से दीक्षा ग्रहण किया और 1936 में ठाकुर भक्ति सिद्धांत जी का तिरोभाव हो गया, अंतर्धान हो गए। और उसके भी कई साल के बाद 1965 यानी कि 43 ईयर्स के बाद प्रभुपाद जी हमारे, अभय चरण मतलब कौन, भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, अपने गृहस्थ जीवन को पूरा उन्होंने कंप्लीट किया, बच्चों को बड़ा किया, निवृत्त हो गए, फिर संन्यास लिया, फिर भागवत लिखा, प्रथम स्कंद का अनुवाद किया, फिर विदेश गए और आज आप देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने 1922 में उस घर के छत के ऊपर जो आज्ञा दिया था वो प्रभुपाद कभी भूले नहीं, उसको कोशिश करते रहे निकलने के बाहर लेकिन निकल नहीं पाए बहुत साल तक, लेकिन उनको बार बार भक्ति सिद्धांत जी जब चले गए दुनिया छोड़कर, उसके बाद भी कई बार स्वप्न में उनके आए, और जो 1922 में उन्होंने आज्ञा दिया था उसी आज्ञा को वो दोहराते रहे। तो ये नहीं कह ऐसा कि आपको देखा है कुछ बोल दिया अब ये करो, आपको देखा कुछ बोल दिया ये करो, ऐसा नहीं। वो दिव्य आज्ञा थी उनकी, वो कंसिस्टेंटली सत्य के रूप में उन्होंने ये आज्ञा उनको बार बार एंड तक देते रहे। फिर संन्यास लेने के बाद दोबारा स्वप्न में आए, तब फिर वो यहाँ से प्रस्थान करके आगे चले गए। तैयारी किया उन्होंने, किताब लिखी बहुत सारी, फिर चले गए। तो वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठाकुर भक्ति सिद्धांत जी ने अगर आज्ञा नहीं दिया होता तो प्रभुपाद जी विदेश नहीं जाते, तो इस्कॉन नहीं बनता, वो विदेशी भक्त भारत में नहीं आते, और विदेशी भक्त के संपर्क में हम नहीं आते, और हमको शर्म नहीं आती। फिर हमको शर्म आई उस समय, क्योंकि हम भी ब्राह्मण कुल के हैं, लेकिन हम तो कुछ भी नहीं करते थे, मजा करते थे। जब मंदिर गए तो देखा विदेशी व्यक्ति PhD किया हुआ, सर मुंडवाकर ब्रह्मचारी बना है और गीता का प्रवचन दे रहा है, वो हम सुन रहे हैं। तो हमको लगा जन्म से तो हमको गीता का प्रवचन देना चाहिए, क्योंकि हम ब्राह्मण हैं, हमको गीता हमको कंठस्थ होनी चाहिए, और एक विदेशी व्यक्ति हमको प्रवचन दे रहा है हमारे शास्त्र के बारे में, कितनी शर्म की बात है। तो वो भावना से फिर हम आगे इसमें आए, मतलब कोई ईर्ष्या नहीं हुई हमको, लेकिन शर्म जरूर आई कि ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर हर ब्राह्मण का नाम लगा के रखे हैं, जनेऊ पहन के 2 पैसे का लेके घूम रहे हैं, कर क्या रहे हैं, मछली खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, गंदी बातें मुंह से कर रहे हैं, क्या फायदा है ऐसे ब्राह्मण बनने का। तो वो जो प्रेरणा है, वो ये सारा चक्र जो है ना, उसके वजह से मिली, और इसलिए हम लोग आज जगन्नाथपुरी में बैठे ये सारी भगवान की कृपा है। ठाकुर भक्तियों ने इच्छा किया था, प्रार्थना किया था, तो विष्णु का एक किरण के रूप में भक्ति सिद्धांत जी जन्म हुआ, फिर उन्होंने प्रचार किया, फिर उनको प्रभुपाद जी मिले एक छत के ऊपर, उनको आज्ञा दिया, वो 40 साल आज्ञा को क्या कहते हैं सिंचन किया, आज्ञा रख के उसको जल दिया, भूले नहीं उसको। फिर बूढ़ा अवस्था में विदेश में गए, इतना कष्ट सहन किया, 12 साल मेहनत किया, अभी आज 600 जाने के पहले 108 मंदिर बनाया, आज की तारीख में 602 मंदिर बने हुए हैं। एक संप्रदाय के गुरु मिले, वो कहते हैं तुम्हारे प्रभुपाद जी है ना, और तुम्हारा इस्कॉन जो है ना, वो एक बेस्ट संस्था है दुनिया की। कैसे उन्होंने समझाया, वो कहते हैं कि कोई भी संस्था किसी आचार्य की वजह से बनती है, कोई महान संत जो होता है ना, उसके प्रभाव से एक संप्रदाय निर्माण होता है, एक समूह निर्माण होता है भक्तों का, और जब तक वो आचार्य हैं तब तक बहुत उसका प्रचार होता है, बहुत मंदिर बनते हैं, उनके प्रभाव में बहुत लोग प्रभावित हो जाते हैं, जीवन को परिवर्तित कर देते हैं। लेकिन जैसे ही कोई आचार्य का देहांत होता है, उनकी संस्था टूट जाती है, उसमें झगड़े होते हैं, भेद होते हैं, कई शक्लें टूट जाते हैं उसकी, और उनका मिशन जो है कुछ समय बाद समाप्त हो जाता है। बोलता इस्कॉन एक ऐसी संस्था है, प्रभुपाद जी महाराज ने उनके जन्म में उनके जीवन में 108 मंदिर बनाए हैं, और जाने के बाद कितने बनाए, हाँ गिनो आप, आज 602 है, 108 कट करो उनसे, 455 के ऊपर हो गए कि नहीं, मतलब जीवन काल में जितना बनाया उससे 4 गुना 5 गुना तो जीवन के बाद में बनाया उन्होंने, जीवन काल में जितने शिष्य बनाए थे आज उससे कई गुना शिष्य इस्कॉन में सम्मिलित हो गए हैं, जीवन काल में जितनी किताबें बांटी थी उससे कई सैकड़ों गुना किताबें आज वितरित की गई हैं। यानी कि उन्होंने अपना आंदोलन, वो कहते थे हमेशा प्रभुपाद जी कि मेरा जो आंदोलन है वो कुछ समय का नहीं है, 10,000 साल चलेगा, ये जो किताबें मैंने लिखी है वो केवल 10 दिन के लिए 15 साल के लिए लिखी नहीं है मैंने, 10,000 साल तक ये भक्ति के विषय में एक स्टैंडर्ड के रूप में प्रचलित होगी, इट विल बी लॉ बुक फॉर पीपल, स्पिरिचुअल लॉ बुक्स। तो सुनने वाला लगता होगा कि कितने गर्व की बात कर रहे हैं, कितना घमंड है इनको अपने बारे में कि मेरी किताबें 10,000 साल तक चलेगी। लेकिन संत लोग जो सत्य बोलते हैं तो पतित लोगों को द्वेष आता है उनके प्रति कि देखो कैसे घमंड से बात कर रहे हैं। लेकिन वो जा चुके 77 में, आज हम 2015 में बैठे हुए हैं। वो कहते हैं कि ये बृहद मृदंग है, ये एक टाइम बॉम्ब की तरह है। टाइम बॉम्ब कैसा होता है, अभी आप लगाएंगे कुछ देर बाद वहाँ फटेगा, कुछ देर बाद में वहाँ फटेगा, कुछ देर बाद में और वहाँ फटेगा, ऐसे फटते रहेगा वो, चेन रिएक्शन बोलते हैं उसको, श्रृंखला प्रक्रिया बोलते हैं उसको। वैसे उन्होंने जो टाइम बॉम्ब रखा भक्ति का, वो फट रहा है पूरा। जब वो चले गए तो भी चौपाटी का मंदिर नहीं था, ऐसा दिखाया था डंडा दिखा के, यहाँ पर एक मंदिर होना चाहिए। और उसी दिशा में जहाँ डंडा दिखाया था वहाँ पर अभी चौपाटी का मंदिर, बहुत विशाल मंदिर खड़ा हुआ है। तभी मीरा रोड का मंदिर नहीं था, अभी इतना भव्य मंदिर खड़ा हो गया है। भक्ति वेदांत अस्पताल नहीं था, वो भी एक मंदिर ही है ना। तो ये सब विस्तार कैसे हो रहा है? वो कहते हैं कि प्रभुपाद जी बड़े बुद्धिमान और बड़े कुशल आयोजक थे। उन्होंने केवल उनके जीवन काल में व्यवस्था नहीं बनाई थी, उन्होंने आगे जाकर लंबे समय तक के लिए पूरी व्यवस्था बना के रखी, सिस्टम बना के रखी है। GBC गवर्निंग बॉडी कमीशन नाम का एक उन्होंने बनाया और अपने सीनियर भक्तों को उसमें उन्होंने सम्मिलित किया। तब खाली 11 भक्त थे उसमें सन्यासी, आज उसमें 90 भक्त हैं सन्यासी। तो सिस्टम ऐसा बनाया है कि आगे भी ये चलता रहेगा। जब वो थे इस दुनिया में तो रशिया में कुछ नहीं होता था, रशिया में तो पूरा KGB कम्युनिस्ट का बहुत बड़ा भयंकर स्थिति था। तो एक भक्त को एयरपोर्ट, एक व्यक्ति को, रशियन व्यक्ति को प्रभुपाद जी मॉस्को एयरपोर्ट में मिले। मॉस्को में प्रचार करने का कोई चांस ही नहीं है, जैसा आज चाइना में वैसा ही है। तो वो एक व्यक्ति को श्याम सुंदर जी लेकर उनके होटल में लेके आए और 1-to-1 गुप्त रूप में उसको प्रचार किया गया और एक गीता की कॉपी थी उसको दी गई। कहते हैं कि वो एक गीता की कॉपी हजार लोगों ने स्मगलिंग के रूप में पढ़ी, क्योंकि और कोई चारा ही नहीं किताब लाने का, गीता वगैरह का। KGB इनके पीछे पीछे घूमती थी हमेशा, कौन है ये लोग, कहाँ से आ रहे हैं। फिर गीता की स्मगलिंग भी हुई उधर, फिर भक्त लोगों को टॉर्चर किया गया। कितने सारे भक्त बने अंडरग्राउंड, हाँ गुप्त रूप में सत्संग करते थे और KGB आके उनको पकड़ती थी। वो एक ड्रामा है हमारा पूरा, आप देख सकते हैं, उसका नाम है सॉल्टेड ब्रेड। वो पूरा नाटिका बनाई गई उसके ऊपर, कैसे रशिया में लोगों ने कितना कष्ट सहन करते हुए भक्त बने लोग वहाँ पर। फिर एक ज़माना आया रशिया का कम्युनिस्ट राज पूरा टूट गया, पूरे टुकड़े टुकड़े हो गए उसके, और कोई मुसलमान देश बना, कोई हिंदू बना, कोई कुछ बना, कोई क्रिश्चियन बना, सब कोई कम्युनिस्ट रह गया, जैसे भी हो। और फिर हरे कृष्णा खुल गया पूरा उधर, फिर 40 मंदिर बने रशिया में। ये सब क्यों हुआ? एक व्यक्ति को एयरपोर्ट में मिलने के बाद में एक कमरे में एकांत में कुछ बातें हो गई थी, उसके परिणाम स्वरूप आज रशिया में 40 मंदिर हैं। इसको कहते हैं आचार्य। उसके लवम मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए, उसके एक लव मात्र मतलब कितना, एक सेकेंड का 12वां हिस्सा को लव मात्र कहते हैं, लव लव कहते हैं उसको, लव मात्र। उतना भी संग संत का मिलता है तो जीवन परिवर्तन हो जाता है। ये शक्ति संत के अंदर है। कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार परिवर्तन, कृष्ण शक्ति की कृपा जब तक नहीं होती तब तक अपने द्वारा किसी का परिवर्तन नहीं हो सकता है। अब प्रभुपाद जी ने रात को लिखकर बैठकर क्यों लिखा सब कुछ, वो जानते थे कि मैं तो मरूंगा लेकिन किताबें रहेंगी। भक्त लोग आगे बोलते थे, प्रभुपाद हमको आप जैसे बात करने को नहीं आते हैं, हम लोगों को कन्विंस नहीं कर सकते हैं, डोंट वरी उनको मेरी किताब दे दो, मेरी किताब उनको प्रचार करेगी। और अभी नहीं, हर समय करती रहेगी। तो जहाँ पर हम अटक जाते हैं वहाँ किताब देना उनको, तो आगे का हम प्रभुपात करेंगे। तो ये संत की महिमा है। हाँ, तो ये इनकी कृपा से आदेश मिला, उनकी कृपा से विदेश गए, इतना बड़ा आयोजन हुआ। ठाकुर भक्ति विनोद ने 1894 जिस साल में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में भाषण दिया था, उसी साल में ठाकुर भक्ति विनोद ने एक घोषणा की थी, मतलब भविष्यवाणी की थी। वो कहते हैं कि एक सेनापति भक्त आएगा और वो समुद्र पार करके विदेश जाएगा और देश विदेश में हरिनाम का प्रचार करके भक्त बनाएगा। और 1896 में प्रभुपाद का जन्म हुआ कलकत्ता में, और 1922 में उनकी मुलाकात इनसे हुई, एक चिंगारी जलाई गई और 1965 में हरे कृष्ण आंदोलन शुरू हुआ। और आज ये दिन दुगना और रात चौगुना बढ़ रहा है हर जगह पे। अभी मंदिर में कहीं भी जाएंगे आप तो भीड़ ही भीड़ मिलेगी आपको। नया मंदिर खुला उधर भी भीड़, चौपाटी मंदिर में जन्माष्टमी में बोलते हैं रेगुलर भक्तों को जन्माष्टमी मंदिर में नहीं आना चाहिए। पहले बोलते थे मंदिर में आओ, मंदिर में आओ, मस्ट मस्ट संडे को आना ही चाहिए, क्यों नहीं आए आप, अटेंडेंस आपको लेना पड़ेगा, ऐसा बोलते थे। आजकल बोलते हैं कि जन्माष्टमी मंदिर में मत आओ, आप तो रोज आते रहते हो, बाहर के लोगों के लिए खुला रखो मंदिर, आप अपना अपना जन्माष्टमी कहीं कहीं और बनाओ। तो हमारे जैसे लोग जो हैं वो कहीं वाड़ा या कहीं सावंतवाड़ी या कहीं कणकवली चले जाते हैं अपना जन्माष्टमी करने के लिए। ये सब क्यों हो रहा है? हाँ, ये कृपा है भगवान की। जगन्नाथपुरी में आओ, क्रिसमस वेकेशन में आओ, वीकेंड में आओ, दिवाली में आओ, फुल। वृंदावन में जाओ, आगरा दिल्ली के लोग फुल। द्वारका में जाओ, साउथ इंडिया में जाओ, किधर भी जाओ, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का जो विधान है ना, पृथ्वी चे आते सर्व नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइ मोर नाम। एक समय आएगा हर शहर में हर ग्राम में मेरा नाम लिया जाएगा। कैसे होगा फिर वो? उसके लिए ये सब अभी परिवर्तन आपको दिखाई पड़ रहे हैं। लोगों के धर्म में श्रद्धा बढ़ रही है और धार्मिक स्थलों में लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। इसका एक श्रेय जो है ना वो बीआर चोपड़ा का वो जाता है, क्योंकि बीआर चोपड़ा ने सबसे पहले डेयरिंग किया महाभारत पे सीरियल बनाने का। बहुत बड़ा कार्य था वो, बहुत भयंकर कार्य था, डिफिकल्ट कार्य था, लेकिन बड़ी कठिनाई से उन्होंने महाभारत का एकदम बढ़िया सीरियल बनाया। उसके पहले रामानंद सागर का भी श्रेय उसके अंदर है। चाहे निजी जीवन में कैसे भी हो, लेकिन रामायण का सीरियल उन्होंने पूरा बनाया। हम जानते हैं हमारे बचपन में कई साल तक चला हो, हर संडे को हम लोग बैठते थे सामने टीवी के, पूरा रास्ता खाली, ट्रैफिक विविक सब बंद, ट्रेन भी खाली, बस भी खाली, रोड भी खाली, सब बैठे थे। तो जो चमत्कार उन्होंने किया ना लोगों को चिपकाने का भगवान के सीरियल के ऊपर, बहुत बड़ा कार्य किया, बहुत बड़ा कार्य। लोगों को धर्म के प्रति श्रद्धा निर्माण हो गई। और रामायण, आप अभी भी कहता हूँ, रामायण आप अभी देखेंगे ना, उसका हर एक वाक्य जो है वो वाल्मीकि रामायण से लिया गया है। हर एक डायलॉग जो है ना वो संस्कृत श्लोक का अनुवाद वैसे के वैसे ही उनके मुख में दिया है, रावण के, राम के। क्योंकि मैंने भी स्क्रिप्ट जब लिखा, रामायण को लेकर बैठा और मैं स्क्रिप्ट लिख रहा था हमारे एक ड्रामा के लिए, तो रामायण का हर एक डायलॉग जो है उसका अनुवाद वर्ड टू वर्ड अनुवाद था उसका। तो उससे जन जागृति हुई भगवान के लिए। उसके बाद बी आर चोपड़ा ने महाभारत बनाया, तो फिर भगवान के विषय में लोगों का श्रद्धा इतना बढ़ गया कि पूरे धर्म क्षेत्रों में सब जगह पर भीड़ बढ़ गई लोगों की। और फिर उसके बाद में फिर लाइन से विष्णु पुराण, ये देवी महात्म्य सब चालू हो गया। उसके बाद लोगों को लगा कि अभी सेल हो रहा है उसका, तो चलो बनाओ उसको। लेकिन अच्छा कार्य हो रहा है ना उसकी वजह से, जो सोए हुए थे माया में वो जग रहे हैं अभी धीरे धीरे। ये चैतन्य महाप्रभु का जो भविष्यवाणी है उसका परिणाम है। और धीरे धीरे आप देखेंगे इसी जन्म में, अगर आप देखेंगे भाग्य से, कि ये भगवान का नाम का प्रचार बढ़ते जाएगा। इसमें आप लोग भाग लेंगे तो आपको भी श्रेय मिलेगा। जैसे भगवान ने कहा अर्जुन, ये तो युद्ध तो हो चुका है, सब लोग मर चुके हैं, तुम लड़ोगे तो तुम्हारा विजय होगा और तुम्हारा कीर्ति होगा कि तुम विजय प्राप्त किया। लेकिन देखो वहां उन्होंने विश्वरूप में दर्शन दिखाया उनको कि सब मर चुके हैं, सब भगवान खा रहे हैं, चंडिका के रूप में ग्रहण कर रहे हैं सबको, सब मरे हुए हैं, ऐसे दिखाया उन्होंने। इसे कहते तो निमित्त, हाँ निमित्त मात्र भव सव्यसाची, सव्यसाची यानी अर्जुन तो निमित्त मात्र बन जाओ। तो युद्ध जो हो चुका है उसको जीतने का भाग्य और श्रेय और कीर्ति आपकी होगी। उस तरह से ये तो आंदोलन जो है फैलने वाला है, आप भाग लो या मत लो, लेकिन भाग लेंगे आप तो आपका भी उद्धार हो जाएगा, उसमें आपका भी बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए इसमें स्वार्थ भी नहीं थे और परमात्मा भी नहीं थे। इट इज ऑल्सो सेल्फिश, योर ओन सेल्फिशनेस ऑल्सो विल बी फुलफिल्ड एंड परमार्थ भी उस पर पूरा हो जाएगा। इसलिए आप सब लोग ये आंदोलन को गंभीरता से लीजिए। और ये लोग कहते हैं हरे कृष्णा वाले विदेशी लोग नाचते हैं, अंग्रेजों का मंदिर ऐसा सब बोलते रहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि कितना ऑर्गेनाइज संस्था है ये। तो हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग उस पर क्यों आते हैं, क्या जरूरत है? हम लोग तो अपने पढ़े लिखे अपना पैसा कमा सकते हैं, आराम से रह सकते हैं, गाड़ी में घूम सकते हैं, हरे कृष्णा बनने की जरूरत क्या है? लेकिन हमने देखा उसको गहराई से, कितना ऑर्गेनाइज्ड, 85 लैंग्वेज के अंदर भागवतम का और भगवद्गीता का अनुवाद किया है। कोई संस्था दुनिया में ऐसी है क्या? 85, अरे अरबी में भी है भगवद्गीता, अरबी भाषा में उल्टे पढ़ते उसको, उर्दू भाषा में भी है, पर्शियन में भी है। कोई संस्था ने आज तक इतना कार्य नहीं किया है जो प्रभुपाद की प्रेरणा से हुआ है। कुवैत के राजा की जो लड़की है राजकन्या, वो गिरिराज महाराज की शिष्या है। एक सऊदी अरब छोड़ के सभी मुस्लिम देशों के अंदर प्रभुपाद जी की संस्था का प्रचार है और भक्त बने हुए हैं। पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम भी भगवान के कृष्ण के हरे कृष्णा में भक्त बने हुए हैं। हमारे चौपाटी मंदिर में आके ट्रेनिंग लेके चले गए। वो जानबूझ के अपना नाम भी बदल के बताते थे, क्योंकि अगर उनको मालूम पड़ा पाकिस्तान के लोगों तो उनको शूट कर देंगे वो, इसलिए वो अपना नाम गोपाल गोविंद ऐसा कुछ बताते थे। लेकिन एकांत में बताते थे कि हम पाकिस्तान के मुस्लिम हैं, हमको कहीं प्रभुपाद की किताब मिली थी, मैराथन में बांटते थे लोग, तो वो किताब पढ़कर हम लोग बहुत प्रभावित हो गए। लेकिन जाहिर रूप में कर नहीं सके कुछ, तो छुप छुप के इंडिया में आके फिर इस्कॉन के मंदिर में आके बेस बदल के हम लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं। वहाँ पर भी हम ओपनली ये सब नहीं कर सकते हैं, हमारे धर्म के लोग मार देंगे हमको। देख सकते हैं कितना किताब का प्रभाव है। प्रभुपाद जी स्वयं को, खुद को अपने किताबों में छोड़ के चले गए हैं, जो भी लेगा उसको उनका संग प्राप्त हो जाएगा। और ये महीना जो है वो किताब वितरण का विशेष महीना है, इसमें प्रभुपाद की किताबों का वितरण सबको करते हैं, और जो हम नहीं कर सकते हैं वो किताबों के माध्यम से हम बांट कर लोगों को दे सकते हैं। आप भी लीजिए प्रभुपाद की किताबें और उनका संदेश खुद लीजिए और लोगों तक पहुँचाइए। ये जो भागवत गदाधर पंडित जी हाँ इतना सुनाते थे चैतन्य महाप्रभु को, सैकड़ों बार सुनाते थे, उसका पूरा 18,000 श्लोकों का अनुवाद तात्पर्य के साथ प्रभुपाद ने लिखा है। दशम स्कंद में उनका देहांत हो गया तो उसके आगे का जो 2 स्कंद है वो उनके शिष्यों ने पूरा कर दिया है, और आज पूरा 18,000 श्लोकों का तात्पर्य के साथ में इतने बड़े बड़े ग्रंथ जो है लोगों के लिए उपलब्ध है। लेकिन वो बनाए और नहीं बांटेंगे और पढ़े रहेंगे गोडाउन में तो क्या लाभ है उसका, पतित जीवों तक पहुँचाना चाहिए उसको, तब जाके उनका जो मेहनत है उसको हमारे भी मेहनत के आधार से फल प्राप्त होगा। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद सबका। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच।